उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में आपको हमारा प्रेम भरा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। श्रोताओ, इन दिनों में हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से अय्यूब नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है अय्यूब की पीड़ाएं और समस्याएं। हमें विश्वास है श्रोताओ कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक ज्ञान मिल रहा है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं। और आज फिर से एक बार हमेशा की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों पुराने नियम की पुस्तक बाइबल में से अय्यूब की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि अय्यूब के पास सब कुछ था, लेकिन सब कुछ नाश हो गया, और हमने यह भी देखा कि वह परमेश्वर के प्रति ईमानदार बना रहा। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, अय्यूब के जीवन से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए। और विशेष करके हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो निराश हैं, दुखी, चिंतित और बीमार हैं। पिताजी, आप उनसे भी बातचीत कीजिए ताकि आज के अध्ययन के द्वारा वे अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सके। इस समय को हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम अय्यूब की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, आज हम अध्याय 3 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और आज का विषय है अय्यूब का पहला उपदेश और शिकायत। अय्यूब को परखा जा रहा था और वह बलि का बकरा बन गया था। शैतान ने परमेश्वर को चुनौती दी थी, तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है और उसे सब कुछ दे दिया है, यदि यह सब उसे छीन लिया जाए तो वह तुझे मुंह पर कोसेगा। शैतान मनुष्य पर लाछन लगा रहा है और परमेश्वर की निंदा कर रहा है। स्वार्गिक प्राणी चुप खड़े लज्जा से लाल चेहरे लिए परमेश्वर की सर्वोच्च सृष्टि शैतान जो अब पतित है उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा करते हुए सुन रहे होंगे। परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब पर हाथ डालने की अनुमति दे दी थी, अतः शैतान ने अय्यूब के जीवन में हस्तक्षेप आरंभ किया। हमने देखा है कि उसे तोड़ने के लिए उसने कैसे एक एक करके आशीषों से वंचित किया। इससे पूर्व कि हम अय्यूब और उसके मित्रों का वार्तालाप सुने, हम फिर से इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे। मेरे प्रियो, आप और मैं एक भटकी हुई जाति के हैं, अतः यह सोचना कि हम इस संसार में झूठों, धोखा देने वालों, चोरों और हत्यारों के मध्य में वास कर रहे हैं उचित नहीं है। हम कहते हैं हम ऐसे नहीं हैं, मुझे डर है कि हम हैं, हम सब हैं, हमारी जाति ही ऐसी है। यही कारण है कि परमेश्वर हमें ऐसी दशा में स्वर्ग नहीं ले जा सकता। यदि परमेश्वर हमें ऐसी दशा में स्वर्ग ले जाए तो वहां स्वर्ग नहीं, संसार ही होगा। मैं नहीं जानता कि आपके क्या विचार हैं, परंतु मैं तो संसार की नकल वहां नहीं देखना चाहता। जी हाँ, परमेश्वर भी इसका कारण नहीं देखता है। यही कारण है कि वह हमें इसी दशा में स्वर्ग नहीं ले जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने परिष्कृत धर्मी फरीसियों से कहा था कि उन्हें नया जन्म लेना अवश्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:7 में, यदि हमारे लिए सांत्वना की कोई बात है तो वह यह है कि हम सब एक ही नाव में हैं। आज हम सामान्य व्यवहार की चर्चा करते हैं। मनोवैज्ञानिक इसमें दक्ष हैं। उसने सामान्य व्यवहार की परिभाषा कहाँ से खोजी है? वह तो बहुमत को देखकर कहता है कि वही सामान्य है। वह कैसे जानता है कि बहुमत ही सामान्य व्यवहार करता है? मेरे विचार में ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है हम सब पाप में हैं। जी हाँ, मनुष्य निर्बल, भंगुर, दोषपूर्ण है। मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगाड़ना आसान है। हम में से किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। मानदंड से पथ भ्रष्ट होना बहुत आसान है। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 10 में से एक मनुष्य मानसिक चिकित्सालय में जाता है। संख्या बढ़ती ही जा रही है। परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा खड़े होने के लिए स्तंभ खड़े किए हैं। सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय उसके 29 पद में इसी बात को इस प्रकार से कहा गया है, देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को सुरक्षा कवच पहनाया। परमेश्वर ने सबको भक्त अभक्त सबको सहायक आसरा दिया हुआ है। वह धर्मी अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। दुष्ट को भी उतना ही सूर्य प्रकाश और हवा तथा स्वस्थ प्राप्त है जितना कि धर्मी जन को, मसीही विश्वासी को भी। शैतान जानता है कि यदि वह मनुष्य के इस सहायक स्तंभ को गिरा दे, उसकी सहायता के आश्रय को हटा दे, उसकी सुरक्षा के कवच को भी हटा दे, तो वह उसे परेशान करके उलट सकता है, उसका मनोबल समाप्त कर सकता है, उसके विचार बदल सकता है, उसका मस्तिष्क विकृत कर सकता है। अतः परमेश्वर ने शैतान को रोकने के लिए मनुष्य के चारों ओर बाड़ा बांधा है। कभी कभी शैतान को फाटक तोड़ने की अनुमति भी मिल जाती है और वह मनुष्य को पूर्ण रूपेण वंचित कर सकता है। परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दे दी कि वह अय्यूब का बुद्धि परिवर्तन करे। अय्यूब की पुस्तक इसी समस्या का उल्लेख करती है। इसमें मनुष्य का वंचित होना दिखाया गया है, परंतु समाधान नहीं दिया गया है, जबकि समाधानों का सुझाव प्रस्तुत किया गया है। मेरे प्रियो, समाधान के लिए आपको नया नियम पढ़ना होगा। यह वैसे ही है जैसे गणित की पुस्तकों में समस्याओं के उत्तर पुस्तक के अंत में दिए जाते हैं, जबकि समस्याएं अग्रभाग में होती है। बाइबल भी ऐसी ही पुस्तक है। आपकी समस्या यहाँ दर्शाई गई है और उसका समाधान नए नियम में पाया जाता है। मेरे मित्रों, कई परिप्रेक्ष्यों में नया नियम एक अपूर्ण पुस्तक है, उसमें समाधान नहीं है। किसी ने कहा पुराना नियम आशा है और नया नियम आशा की पूर्ति। अध्याय 1 और अध्याय 2 में शैतान अय्यूब की बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। उसने अय्यूब को कवच के एक एक भाग से वंचित कर दिया है। हमारे लिए यह जानना उचित है क्योंकि अब हम अय्यूब और उसके मित्रों के वार्तालाप का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए देखें, पहला है शैतान ने अय्यूब को सांसारिक आशीषों से वंचित कर दिया है। मनुष्य को भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पशु तो जन्म से ही कोट पहना होता है, परंतु आप और मैं संसार में आए तो हमें वस्त्रों की आवश्यकता थी। हमें भोजन, वस्त्र और घर की आवश्यकता है। मनुष्य को भेड़ बकरियां, खत्ते और भूमि की आवश्यकता है। उसे अपने लिए वस्तुओं की आवश्यकता है, उसे परिवार की आवश्यकता है। धर्मशास्त्र में व्यक्त है कि परमेश्वर ने हमारे आनंद के लिए सब कुछ दिया है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर द्वारा रचे गए संसार का आनंद ले। यद्यपि संसार पाप के श्राप के अधीन है, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अद्भुत रीति से वस्तुएं उपलब्ध कराई हैं। जी हाँ, भौतिक वस्तुएं आत्मिक आशीषें हो सकती हैं। समृद्धि परमेश्वर का वरदान है। अधिक बड़े खत्ते बनाने में बुराई नहीं है। संकट तो उन पर निर्भर रहने का है। उन्हें जीवन का सर्वस्व मानना ही संकट का भूल है। मेरे प्रियो, आज हमारे साधन, सुविधाएं, सुख हमारे लिए बंदी गृह बन गए हैं। यही कारण है कि मनुष्य अपने घर की सुख सुविधा से निकलकर छुट्टियों पर जाना चाहता है। आज विश्वासियों को अकेले समय निकालकर सोचना है। मैं सांसारिक वस्तुओं पर भरोसा करता हूँ या परमेश्वर पर। अय्यूब का सब कुछ नष्ट हो गया था, वह धनवान से कंगाल हो गया था, वह हिल गया था परंतु नींव से नहीं हिला था। दूसरी बात देखते हैं, परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वह अय्यूब के प्रिय जन उससे छीन ले। हमें प्रिय जनों की आवश्यकता है कि वे हमें सहारा दें। मेरे विचार में परमेश्वर शिशुओं को आकर्षित इसलिए बनाता है कि हम उन्हें गोद में ले लें और गले लगाएं। उन्हें भी यही चाहिए। मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा आनंद तब प्राप्त हुआ था जब मैंने अपने पहले बच्चे को गले से लगाया था, और आज भी मेरा आनंद अपने बच्चों के साथ में अद्भुत है। परमेश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है। बच्चा बड़ा होकर भी माता पिता के पास प्रेम और सहानुभूति पाने के लिए जाता है। वह चोट लगा ले तो अपनी माता के पास भाग कर जाता है। इससे उसे लाभ तो नहीं होता, परंतु उसे सहायता प्राप्त होती है। इस प्रेम से वंचित बच्चा कलह का स्वभाव और असाधारण मनोवृत्ति विकसित कर लेता है। मेरे विचार में मनोविज्ञान इस विषय में सही है। अब समय आता है कि बच्चा बाहर निकले। एक किशोर माता पिता पर कम निर्भर करता है और उसका प्रेम रुख बदलता है, और अंत में वह प्रेम उसकी संतान पर आ जाता है। परंतु अब सबको प्रियजनों की आवश्यकता है। अब तीसरी बात है, मनुष्य के कल्याण में स्वास्थ्य एक बड़ी बात है। आत्महत्याओं की सूची में लिखा होता है कि स्वास्थ्य लगाकर खराब रहने से किसी ने आत्महत्या कर ली। परमेश्वर के भक्तों में अनेक जन अस्वस्थ होने के कारण सामान्य दिनचर्या से विरक्त रोग शैया पर रहते हैं। संभवतः उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखने की वह विधि जान ली जो आप और मैं नहीं जानते। शैतान को अनुमति दे दी गई थी कि वह अय्यूब से उसका स्वास्थ्य भी छीन ले, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा आघात था। तब हम चौथी बात देखते हैं, अय्यूब अपने साथी का प्रेम और सहानुभूति भी खो बैठा। परमेश्वर ने आदम को एक सहायक अर्थात अर्धांगिनी दी थी। मेरे विचार में परमेश्वर ने प्रत्येक पुरुष के लिए एक पसली रखी है, अर्थात एक पत्नी रखी है। परमेश्वर ने मनुष्य के कल्याण और आनंद के लिए विवाह की स्थापना की है। मनुष्य दिन भर के काम, संघर्ष और परिश्रम से चूर घर जाकर अपनी पत्नी के गोद में गिरता है, जो उसे संभालती है और समझाती है। संभवतः वह रोता भी है अपनी निराशाओं से। यह कैसा अद्भुत प्रबंध है। अय्यूब तो अभागा इससे भी वंचित हो गया था, पत्नी के अनुराग और उसकी सहानुभूति से। अब हम देखते हैं पांचवी बात, अय्यूब के मित्र सहानुभूति दर्शाने आए, परंतु उसने उन्हें मरीचिका ही पाया। जब उसने उन्हें आते देखा तो सोचा था कि वे उसके लिए मरुधान होंगे, परंतु वे मरीचिका सिद्ध हुए, इसलिए वह उन्हें दयनीय ढाड़स बंधाने वाले कहता है। हम देखेंगे क्यों। अब शैतान इससे अधिक क्या कर सकता था। उसने अय्यूब के सब सहारे हटा दिए थे, अब वह अय्यूब के जीवन के मूल्यों को भी भ्रष्ट करेगा। जी हाँ, हमें अग्रिम वार्तालापों के अध्ययन से इस बात का पता चलेगा और इस बात पर सावधानी भी बरतना है। छठवीं बात हम देखते हैं, अय्यूब अपना मूल्य और सम्मान खो देता है। मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। परमेश्वर उन पर दया करे जो अपने दुष्ट साथियों को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन नाश करते हैं। परमेश्वर ही मनुष्य को जीवन मूल्य देता है। लुकार्ची सुसमाचार 12 अध्याय उसके 7 पद में प्रभु यीशु ने कहा, तुम बहुत गौरयों से बढ़कर हो, तथापि वह हमसे कहता है कि स्वर्गीय पिता सब गौरयों को जानता है और यह भी जानता है कि वे कब गिरती हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा अधिक मूल्यवान होना कैसा सिद्ध होता है। मसीह यीशु हमारे लिए मरा, इससे सिद्ध होता है कि हमारा मूल्य क्या है। हम मसीह यीशु के लहू की कीमत के हैं, उसने हमें मोल लिया है। एक विद्वान बीमार होकर मार्ग में ही गिर पड़ा था। डॉक्टरों ने उसे आवारा समझकर कहा, क्या हम इस निकम्मे प्राणी का ऑपरेशन करें। उस विद्वान रोगी ने कहा, जिस प्राणी के लिए मसीह मरा उसे निकम्मा न कहें। जी हाँ, स्मरण रखें, शैतान हमें अपना मूल्य एवं सम्मान भुलाने पर बाध्य करता है। सातवीं बात हम देखते हैं, अय्यूब परमेश्वर के न्याय के बोध से भटक जाता है। हमें ध्यान रखना है कि यह पुस्तक भी बाइबल की अन्य पुस्तकों की नाई प्रेरित वचन है, परंतु इसके नायकों की सब बातें सच नहीं है। यह शैतान द्वारा हवा को बहकाने का सा है। उत्पत्ति की किताब 3:4 में तुम निश्चय न मरोगे, उसका झूठ भी प्रेरणा द्वारा ही लिखा गया है। कुछ लोगों का मानना है कि बाइबल की हर एक बात सच है, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि कौन क्या कह रहा है। इस पुस्तक में हम देखेंगे कि अय्यूब के मित्रों की बातें सच नहीं है। आठवीं बात है, अय्यूब परमेश्वर के प्रेम की अनुभूति से भी भ्रष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति कहता था, अय्यूब 1:21 में, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है, अब वही आगे चलकर कहता है 6:4 में, सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अंदर चुभे हैं और उनका विष मेरी आत्मा में बैठ गया है, परमेश्वर की भयंकर बात मेरे विरुद्ध पांति बांधे है। 9 में वह कहता है, हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं। दूसरे शब्दों में, कोई परमेश्वर के और कोई मेरे हाथों को लेकर जोड़ दे। अय्यूब की इस पुकार का उत्तर नए नियम में है, जिसे हम 1 तीमोथियुस की पुस्तक 2:5 में पढ़ते हैं। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास एक बिचवई है, मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति है। मैंने इस मनन में समय लगाया क्योंकि जो वार्तालाप अब आरंभ होगा और 37 तक चलेगा, उसे समझने के लिए इस पृष्ठभूमि की आवश्यकता थी। उनके वार्तालाप के 3 भाग हैं। पहला है अय्यूब, तब एलीपच और अय्यूब का प्रतिवाद। दूसरा है विलदत और अय्यूब का प्रतिवाद। और तीसरा है सोपर और अय्यूब का प्रतिवाद। हम देखते हैं कि वार्तालाप का यह क्रम 3 मुखी है, परंतु सोपर तीसरी बार शांत रहता है। उनका वार्तालाप प्रतियोगिता स्वरूप है। तो आइए हम देखते हैं पहला चक्र। इसमें हम देखेंगे अय्यूब जो 3 में है, एलीपज का पहला वाद 4-5 में, अय्यूब का प्रतिवाद 6-7 में, विलदत का वाद 8 में, अय्यूब का प्रतिवाद 9-10 में, सोपर का प्रथम वाद 11 में और अय्यूब का प्रतिवाद 12-14 में। ये पहला चक्र है। अब हम देखते हैं दूसरा चक्र। इसमें है एलीपज का दूसरा वाद 15 में, अय्यूब का प्रतिवाद 16-17 में, विलदत का दूसरा वाद 18 में, अय्यूब का प्रतिवाद 19 में, सोपर का दूसरा वाद 20 में, अय्यूब का प्रतिवाद 21 में। और अब हम आगे देखते हैं तीसरा चक्र। इसमें है एलीपज का तीसरा वाद 22 में, अय्यूब का प्रतिवाद 23-24 में, विलदत का तीसरा वाद 25 में, अय्यूब का प्रतिवाद 26-31 में। मेरे प्रियो, अय्यूब के मित्र 7 उसके साथ बैठे थे। अंत में अय्यूब उनकी कुटिल दृष्टि के कारण कहना आरंभ करता है, वह हाय भरता है और अपने जन को कोसता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अय्यूब का पहला वाद जो अय्यूब की पुस्तक 3:1-5 में है। अय्यूब 3:1-5 में लिखा है, इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने और कहने लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ और वह रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ रहा, वह दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से ईश्वर उसकी सुधि न ले और न उसमें प्रकाश हो, अंधकार और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहें और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीजें उसे डराएं। मेरे मित्रों, यहाँ पर यह बहुत अच्छा विवेचन है। भाषा भी सुंदर है, परंतु यदि आप इसका सारांश निकालें तो वह केवल यह कह रहा है, काश मैं पैदा ही न हुआ होता। आपने कितनी बार ऐसा सोचा है? मेरे विचार में हम में से अधिकांश ने अपने युवावस्था में निराशा के समय यह कहा होगा। यही अय्यूब भी कह रहा है। अंतर केवल इतना है कि उसकी भाषा कविता के रूप में है। आगे हम देखते हैं अय्यूब 3 अध्याय उसके 6-12 पद में लिखा है, घोर अंधकार उस रात को पकड़े, वर्ष के दिनों के बीच वह आनंद न करने पाए और न महीनों में उसकी गिनती की जाए। सुनो, वह रात बांझ हो जाए, उसमें गाने का शब्द न सुन पड़े। जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हैं और लिबियातान को छेड़ने में निपुण है, उसे धिक्कारें, उसकी संध्या के तारे प्रकाश न दे, वह उज्याले की बाट जोहे पर वह उसे न मिले, वह भोर की पलकों को भी देखने न पाए, क्योंकि उसने मेरी माता की कोख को बंद न किया और कष्ट को मेरी दृष्टि से न छिपाया। मैं गर्भ ही में क्यों न मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों न छूटा, मैं घुटनों पर क्यों लिया गया, मैं छातियों को क्यों पीने पाया। मेरे मित्रों, अय्यूब अत्यधिक स्पष्ट है, काश मैं पैदा ही ना हुआ होता। यह एक अति रोचक बात है मेरे मित्रों कि ऐसा स्वभाव जीवन में समस्या का समाधान नहीं लाता है। आपकी कामना आपके जन्म को पलट तो नहीं सकती। आप कहते हैं मेरे लिए मर जाना अच्छा है, तो क्या आप मर जाते हैं? यह समय गंवाना है। इस प्रकार मनुष्य केवल अपने मन का गुब्बार निकाल सकता है। अय्यूब के साथ भी ऐसा ही था। अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय उसके 13-14 पद में आगे पढ़ते हैं, ऐसा ना होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता, और मैं पृथ्वी के उन राजाओं और मंत्रियों के साथ होता जिन्होंने अपने लिए सुनसान स्थान बनवा लिए। ध्यान दीजिए, उन्होंने अपने स्मारक और पिरामिड बनवाए हैं। आगे लिखा है अय्यूब 3 उसके 15-16 पद में, या मैं उन राजकुमारों के साथ होता जिनके पास सोना था, जिन्होंने अपने घरों को चांदी से भर लिया था, या मैं असमय गिरे हुए गर्भ के समान हुआ होता, या ऐसे बच्चों के समान होता जिन्होंने उज्याले को कभी देखा भी ना हो। वह मृतक जन्म लेने की कामना करता है। अय्यूब कहता है कि उसे इसका सौभाग्य नहीं मिला। वह मृत्यु को एक महान समता कहता है। मरकर सब बराबर हो जाते हैं। मेरे मित्र, इस अध्याय में अय्यूब 2 बातें कहता है। उसकी कामना थी कि वह जन्म ही ना लेता, और यदि उसका जन्म हुआ तो वह मृतक ही होता। ये उसकी 2 मनोकामना है। उसे अपने कष्टों में राहत नहीं मिल रही थी। आगे हम पढ़ते हैं अय्यूब 3 अध्याय उसके 17-24 पद में लिखा है, उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुख नहीं देते और थके मांदे विश्राम पाते हैं, उसमें बंदी एक संग सुख से रहते हैं और परिश्रम करने वाले का शब्द नहीं सुनते, उसमें छोटे बड़े सब रहते हैं और दास अपने स्वामी से स्वतंत्र रहता है। दुखियों को उज्याला और उदास मन वालों को जीवन क्यों दिया जाता है? वे मृत्यु की बाट जोहते हैं पर वह आती नहीं, और गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। वे कब्र को पहुंचकर आनंदित और अत्यंत मगन होते हैं। उज्याला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों ओर ईश्वर ने घेरा बांध दिया है? मुझे रोटी खाने के बदले लंबी लंबी सांसें आती हैं और मेरा विलाप धारा के समान बहता रहता है। वह जीवन की अपेक्षा मृत्यु चाहता था। जीवन उसके लिए बोझ था। वह मृत्यु को एक सोने की खदान खोदने वाले की नाई खोजता है कि पाने पर आनंदित हो। उसकी दशा निराशजनक और हताशा से पूर्ण थी। आगे लिखा है अय्यूब 3 अध्याय उसके 25-26 पद में, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मुझे न तो चैन, न शांति, न विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। अय्यूब ऊज देश में ऐश्वर्य का जीवन जी रहा था और सब कहते थे अय्यूब का जीवन महान है। अब अय्यूब कहता है, उस समय भी मैं डरता था, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। उसकी समृद्धि में भी जीवन की अनिश्चितता के कारण उसकी शांति भंग थी। मेरे विचार में आज भी अनेकों का यही भय है। वे डरते हैं कि कुछ भयंकर बात ना हो जाए। हमारी समस्या है कि हम मुक्तिदाता की अपेक्षा अपने सुरक्षा कवच पर भरोसा करते हैं। हमें सांसारिक बातों की अपेक्षा बाइबल पर आश्रित होना है, परमेश्वर के वचन पर निर्भर करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि अय्यूब का विश्वास जाता रहा, लेकिन नहीं, यह जीवन की गहराई में कड़वाहट का अनुभव पाने वाले मनुष्य की शिकायत है। कड़वाहट है, वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उस पर कष्ट क्यों आए हैं। उसके मित्र वहां बैठे हैं और वह अकेले ही शिकायत कर रहा है। भाषा तो अति उत्तम है, परंतु अय्यूब के पास उत्तर नहीं है। निराशा घोर अंधकार से भी भरी है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अय्यूब के जीवन की परिस्थितियों को देखा है। अगले अध्ययन में हम देखेंगे कि किस प्रकार अय्यूब के मित्र उससे बातचीत करते हैं। कृपया अगले अध्ययन में आप अवश्य उपस्थित हों ताकि इन सारी श्रृंखलाओं को हम देखने पाएं। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
खुशबू